اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اگلا باب السنت والصحابۃ، سنت صحابہ کرام کی نظر میں. اگر عربی لفظ کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ سنت اور صحابہ کرام، مراد اس سے یہی ہے کہ صحابہ کرام کی نظروں میں سنت کا کیا معیار تھا. ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے بعد بہترین دور صحابہ کا دور تھا. ان کی نظروں میں سنت کی کیا اہمیت، اس کو سنتے وقت ساتھ ساتھ ذہن میں تقابل کر سکتے ہیں کہ پھر آج کے دور میں عموماً لوگوں کی نظروں میں سنت کی کیا اہمیت ہے، اور لوگوں میں سے بھی اپنے آپ کو دیکھیں گے. بہت ہی دلچسپ واقعات آپ اس میں سنیں گی، اور آپ کو فیل ہو رہا ہے نا کہ اتباع سنت کی مسائل میں آپ کو بہت ساری احادیث ہسٹوریکل مل رہی ہیں، اور بالکل فیلنگ ایسی آتی ہے جیسے آپ سیرت کو پڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال کی منوعن کہتے ہیں ایز اٹ از، اسی طرح پیروی کرنے کی کوشش فرماتے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا آپ کو کرتے دیکھتے. چند مثالیں دیکھیں گے. اتباع سنت کے لیے سنت کی مصلحت اور حکمت سمجھ میں آنا ضروری نہیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. آج کے دور کے مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کو جب دین کی کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو ساتھ ہی کہتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے. بھائی تم پک کا گوشت نہیں کھاؤ، اچھا ریزن کیا ہے؟ اچھا تم یہ نہ کرو تو وہ نہ کرو، ریزنز پوچھتے ہیں. حالانکہ ریزن پوچھنا ایک ملازم کی تو شان نہیں ہے. چھوٹی سی مثال دے دوں کہ آپ کے گھر میں اگر کام کرنے کے لیے کوئی آپ نے میڈ رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو کہہ دیں کہ ایسا کرو کہ آج تم سبزی گوشت پکا لو، تو کہے گی بھائی کیا حکمت ہے آج. آپ کہیں اچھا آج ایسا کرو کہ تم پلاؤ بنا لو، وجہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ بری لگے گی نا. آج تم یہ کمرہ صاف کر لو، کیوں؟ آپ تو یہ جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کہو کہ اچھا ٹھیک ہے. اب یہ تو ایک ملازم ہے، اس کی اور ہماری کیا اوقات ہے اور ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیں یا اللہ کے نبی دیں تو حکمت معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس اللہ نے کہہ دیا اور اس کے رسول نے کہہ دیا. صحابہ کرام کو دیکھیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز آپ نے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ دیے. جب صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. رسول اکرم نے نماز ختم کی تو انہوں نے دریافت فرمایا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم نے چونکہ آپ کو جوتے اتارتے دیکھا لہٰذا ہم نے بھی جوتے اتار دیے. آپ نے فرمایا، مجھے تو جبرائیل نے آ کر بتایا کہ میرے جوتوں میں غلاظت ہے، یعنی باہر سے کوئی گندگی لگ گئی، یا کہا کہ تکلیف دہ چیز ہے، لہٰذا میں نے جوتے اتار دیے. پھر آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، جب مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو پہلے اپنے جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو، اگر ان میں غلاظت ہو تو اسے صاف کر لو، پھر ان میں نماز پڑھو. ابو داؤد کی روایت ہے. دو باتیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئیں. پہلی بات ہے، جیسے کہ پیچھے بھی ذکر ہو گیا، کہ جوتے پہن کر مجبوری یا ضرورت کے تحت نماز پڑھی جا سکتی ہے، خاص طور پہ اب کھلی جگہ پہ ہیں، باہر ہیں، بارش ہو رہی ہے یا زمین گیلی ہے، تو آپ جوتے اتارنے کی بجائے جوتے پہن کے بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کہیں گندگی لگی، ایک تو ہوتا ہے مٹی لگنا، یہ گندگی نہیں ہوتی، مٹی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، لیکن مٹی کے ساتھ کوئی جانور کی گندگی لگ گئی، کوئی ایسی غلاظت تھی، تو پھر اس صورت میں آپ کہیں خشک مٹی پہ جا کے اپنے پاؤں کو گھسیٹ کے تو اس کو یعنی صاف بھی کر سکتے ہیں. یعنی ظاہری نجاست نہیں ہونی چاہیے، باقی مٹی کا لگنا، پانی کا لگنا، کیچڑ کا لگنا، یہ اس کو گندا نہیں کرتا. لیکن آج کل چونکہ مسجدیں ہیں، کارپیٹڈ ہیں، اچھی بنی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کہیں کہ اندر آ کے وہی جوتے لے کے پڑھیں تو یہ تو بات عقل کو بھی نہیں لگتی، کہاں کوئی اس بات کو سن کے حدیث پہ عمل کرنے لگ جائے. تو ضرورت کے تحت باہر ہیں، کسی پبلک प्लेस में हैं, घूमने गए हुए हैं, सैर कर रहे हैं, प्लेइंग में हैं, कोई ऐसे जूते पहने हैं जिनका उतारना मुहाल है, फिर आप पहन लें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अगली हदीस है, अबू राफे रजी अल्लाह अनहु फरमाते हैं कि मिरवान ने हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अनहु को मदीना का कायम मुकाम गवर्नर बनाया। ये मिरवान अल्लाह के नबी के बाद के अदवार में आने वाले एक खुलफा में से थे, या मतलब आप कह सकते हैं कि हकूमती सतह के शख्स थे। हज़रत अबू हुरैरा को मदीना का कायम मुकाम गवर्नर बनाया और ख़ुद किसी काम से मक्का चले गए। इसी दौरान हज़रत अबू हुरैरा ने नमाज जुमा पढ़ाई। पहली रकत में सूरत जुमा, दूसरी में सूरत मुनाफिकून की तिलावत की। हज़रत अबू राफे कहते हैं कि नमाज के बाद मैं अबू हुरैरा से मिला और अर्ज़ किया, आपने वही सूरतें तिलावत फरमाई जो हज़रत अली अपने अहदे खिलाफत में कूफा में पढ़ाया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह को ये दोनों सूरतें नमाज जुम्मा में पढ़ते सुना है, इसलिए मैंने भी पढ़ी हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है। जिससे पता चला कि दोनों सहाबियों का जो अमल था उन सूरतों को पढ़ने का, वो अल्लाह के नबी के अमल से आपने लिया था, खुद से नहीं पढ़ा था। फिर अगली रिवायत, नाफ़े रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के ग़ुलाम थे। नाफ़े फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने बांसुरी की आवाज़ सुनी। क्या कहते हैं बांसुरी को? फ्लूट, यानी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। आवाज़ सुनी तो अपनी दोनों उंगलियां कानों में ठूंस लीं और रास्ते की दूसरी सिमत काफ़ी दूर निकल गए और मुझसे पूछा, ए नाफे, क्या कुछ सुन रहे हो? यानी कि अभी भी आवाज़ आ रही है। मैंने अर्ज़ किया, नहीं। तब उन्होंने अपनी उंगलियां कानों से निकाल ली और फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आपने बांसुरी की आवाज़ सुनी और ऐसे ही किया जैसे मैंने अब किया। हज़रत नाफे ने यह भी बताया कि इस वक्त मैं छोटी उम्र का लड़का था। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। यानी आप देखिए कि अल्लाह के नबी के साथ उनकी ज़िंदगी में वहाँ से गुजरे, तो अल्लाह के नबी ने बांसुरी की आवाज़ सुन के कानों में उंगलियाँ दी। अब ये वाक़या हो गया, ख़त्म। ये बाद में अपने ग़ुलाम के साथ एक जगह से गुजरे और बांसुरी की आवाज़ आई, तो बिल्कुल वही अमल किया जो अल्लाह के नबी ने किया था, और वही पूछा कि क्या आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही तो छोड़ दिया। तो इससे पता चलता है कि कितनी मोहब्बत करते थे। और आज हम देखें कि हमारा सुन्नतों के साथ क्या ताल्लुक है। यदि इस बात को सुनते वक्त मैंने एक सुनी हुई बात मुझे हमेशा याद आ जाती है कि अब जब रिवाज पड़े तो लोगों ने इफ्तारियां भी बड़े होटलों में करनी शुरू कर दी, और इसी तरह की कोई इफ्तारी किसी शहर के बड़े 5 स्टार होटल में थी जहाँ म्यूज़िक लाजमी था। अब जब मगरिब का वक्त होता है और लोग जाते हैं, और उस वक्त जो मुसलमान मुल्कों की बात है कि वहाँ म्यूज़िक चल रहा है, तो कुछ लोगों ने जाके वहाँ कहा होगा कि आप इस वक्त म्यूज़िक बंद कर दें। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे रूल में नहीं, चले कोई बात नहीं, हम म्यूज़िक बंद करके बांसुरी की आवाज़ चला देते हैं। और फिर जो भी रिवायत मुझ तक पहुँची कि फिर लोगों ने बांसुरी की आवाज़ में रोज़े इफ्तार किए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगली रिवायत देखते हैं, हज़रत हलाल बिन यसाफ़ रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम सालिम बिन उबैद के पास थे, एक आदमी ने छींक मारी और कहा, अस्सलामु अलैकुम। हजरत सालिम ने इसके जवाब में कहा, वा अलैका वला उम्मुका, तेरी माँ पर और तुझ पर भी सलाम। फिर कहा, जो मैंने कहा शायद इससे तुझे नागवारी महसूस हुई हो। आदमी ने जवाब में कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मेरी माँ का अच्छे अल्फाज में तस्करा करते, ना कि बुरे अल्फाज से। तो हज़रत सालिम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, सुनो, मैंने ये जवाब इसलिए दिया कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि एक आदमी ने छींक मारी और अस्सलामु अलैकुम कहा। तो इसके जवाब में नबी अकरम ने भी यही जवाब दिया, वा अलैका वाला उम्मी का, लिहाजा मैंने भी वैसा जवाब दिया। फिर अल्लाह के नबी ने उसे बताया कि जब छींक मारो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। रावी कहता है कि आपने आवाज़ दीगर हम्द के कलेमात का भी जिक्र किया, और फिर आपने फरमाया, छींकने वाले के पास जो शख्स मौजूद हो इसे यरहमुकल्लाह कहना चाहिए, और छींकने वाले को फिर यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम कहना चाहिए। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। इससे क्या बात पता चली? हमने जो पहली बात देखी कि अगर एक शख्स छींक मारता है और उसने कहा सलाम अलैकुम, फिर दूसरे ने कहा अलैका व उम्मुका, तो ये इन सहाबी को रिवायत मिली हुई थी अल्लाह के नबी से, इन्होंने वही बात कही। दूसरी चीज़ हमें पता चली कि जिसको छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, सुनने वाले कहेंगे यरहमुकल्ला। अगर औरत है तो अब यरहमुकल्ला भी कह सकते हैं, क्योंकि काफ की ज़ेर जो होती है ये मुअन्नस के लिए होती है। फिर छींकने वाला उसके जवाब में क्या कहे, यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम। एक छींक कितनी दुआएं मिल गई, अल्लाह का रहम हो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ करे, तुम्हें भी माफ़ करे, हमको भी कहे। और जो शख्स छींक मारने वाला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता ना, तो उसको इनमें से कोई बात कहने की इजाज़त नहीं। यानी अगर आप किसी की चीख की आवाज़ सुने और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता तो फिर आप उसको यरहमुकल्ला नहीं कह सकते। इल्ला ये कि बहुत बड़ा मजमा है, आप बैठे हैं, आपको दूर से कहीं से आवाज़ आती है चीखने की, अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ नहीं आई, ज़रा कोई माइक पे आके तो नहीं कहेगा, तो फिर गुमान करते हुए कह दें कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा होगा तो आप भी उसको यरहमुकल्ला कह दें। लेकिन इससे ये कि अपना अमल ज़रूर बनाइए कि छींकने पर ज़रूर ये बात यानी ज़ुबान से बोलिए ताकि दूसरों की दुआएँ आपको मिल सकें। अगली हदीस है, नाफे से रिवायत है कि एक आदमी ने अब्दुल्ला बिन उमर के पास छींक मारी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, तो मैं भी कहता हूँ, यानी मुझे भी रसूलुल्लाह पर सलाम भेजने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह ने हमें यूं सिखाया, छींकने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल, यानी हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है ये कहें, लिहाजा जो सुन्नत तरीका है वही इख्तियार करो। तिर्मिज़ी ने रिवायत किया, यानी बज़ाहर आप देखिए कि पहली बात ज़्यादा अच्छी लग रही है ना सुनने को, लेकिन कहा नहीं वो बहुत अच्छी बात है, वो किसी और मौके पर कहो, लेकिन छींकने के मौके पर अल्लाह के नबी ने यही कहा, तो इतना ज़्यादा वो एहतियात करते थे इस बात में कि थोड़ी सी भी आपकी सुन्नत से दूर ना हटें।